आस्तिक ने अरुणिमा को सच बता दिया था कि वो क्यों आरुषि को उससे दूर रखने की कोशिश कर रहा था, और ये सच्चाई सुनकर अरुणिमा की आंखों से आंसू बह निकले। आस्तिक ने अरुणिमा को कसकर गले लगाया और उसे सहलाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो अरुणिमा, मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था ये जानकर तुम दुखी हो जाओगी, और मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। मैं बस तुम्हारे होठों पर मुस्कान चाहता हूँ। आस्तिक अरुणिमा से अलग हुआ। उसने अरुणिमा के गालों को अपने हाथों में लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, ना कि एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा प्यार हमारी ताकत है, जबकि लोग हमें कमज़ोर करना चाहते हैं। किसी को भी हक नहीं है हमारे बीच में आने का। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये वादा करते हैं कि कभी भी किसी तीसरे को हमारे रिश्ते के बीच नहीं आने देंगे, और चाहे वो तीसरा कोई भी हो। अरुणिमा ने हल्की मुस्कान बिखेरी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी उदासी थी। उसने सिर हिलाया। आस्तिक ने देखा कि वो अब कुछ हद तक संभल गई है, तो उसने अरुणिमा से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें आरुषि के बारे में अपने माता पिता से बात करनी चाहिए। वो तुम्हें उसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, तुम दोनों के अतीत में क्या हुआ था और आरुषि तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है। मुझे लगता है अब सच जानने का समय आ गया है। एक बार जब तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी, उसके बाद तुम तय करना कि तुम्हें क्या करना है। अरुणिमा कुछ सोचकर सिर हिलाती है और ये फैसला करती है कि वो इस बारे में अपने माता पिता से बात करेगी, लेकिन वो इसके लिए कल सुबह तक इंतज़ार नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अभी फ़ोन कर लिया, भले ही वो जानती थी कि उनके माता पिता जहाँ हैं वहाँ रात हो रही होगी और वो सो रहे होंगे। पर अरुणिमा की नींद और चैन दोनों उड़े हुए थे, और इस वक्त वो सिर्फ सच्चाई जानना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पिता को फ़ोन कर लिया। बृजेश जी अरुणिमा की बात सुनकर एकदम हैरान हो गए, लेकिन आस्तिक की बातों से उन्हें पहले अंदाज़ा हो गया था कि आरुषि अरुणिमा तक पहुँच चुकी है। पर उन्हें एक बात की तसल्ली थी कि आस्तिक इस वक्त अरुणिमा के पास है, इसलिए आरुषि उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आरुषि का वहां होना ही खतरे की निशानी था, इसलिए बृजेश जी ने कोई अनावश्यक घबराहट नहीं दिखाई और उन्होंने अरुणिमा को सारी सच्चाई बता दी। एक एक करके उन्होंने अरुणिमा के सामने गुजरे हुए कल के हर एक पन्ने खोलकर रख दिए। ये सुनकर अरुणिमा के हाथ पांव एकदम ठंडे पड़ गए, उसके हाथ ढीले हो गए और फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। आस्तिक हैरानी से अरुणिमा को देख रहा था। अरुणिमा का चेहरा एकदम भावहीन हो गया और वो मन ही मन इन सब बातों को लेकर बहुत परेशान होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी अपनी बहन उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। ये सच था कि वो जो सपना देखा करती थी वो कोई सपना नहीं था, बल्कि उसकी बहन की सच्चाई थी, और आरुषि ने ही अरुणिमा को धक्का देकर गिराया था, जबकि उनकी माँ ने कहा था कि अरुणिमा ने किसी को छत से गिराया था। पर सच इसके बिल्कुल विपरीत था। आरुषि ही वो थी जिसने अरुणिमा की जान लेने की कोशिश की थी और उसे ट्री हाउस की छत से नीचे फेंक दिया था। मतलब अरुणिमा कोई सपना नहीं देख रही थी, वो सच्चाई थी, और अब वो इस सच्चाई को महसूस भी करने लगी थी। अरुणिमा का दिल घबराया हुआ था कि आरुषि उसे इतनी नफरत करती है कि जब वो 10 साल की थी तब से ही आरुषि उसे मारने की कोशिश कर रही थी। जब बृजेश जी ने अरुणिमा को ये सब बताया तो अरुणिमा के हाथ पैर और भी ज्यादा ठंडे पड़ गए थे। बृजेश जी ने अरुणिमा को बताया कि उन्होंने अरुणिमा और आरुषि दोनों को अनाथ आश्रम से गोद लिया था, क्योंकि वो दोनों एक जैसी थीं। भले ही वो एक बच्चा चाहते थे, पर दोनों बच्चियों के मासूमियत देखकर उन्होंने दोनों को गोद ले लिया और समान रूप से प्यार किया। लेकिन बाद में किसी वजह से आरुषि धीरे धीरे अरुणिमा से नफरत करने लगी और उसका व्यवहार भी ठीक नहीं था। अरुणिमा को बचपन में संगीत पसंद था और वो गिटार लेकर ट्री हाउस पर बैठकर बजाया करती थी, जबकि आरुषि को ना तो संगीत पसंद था और ना गिटार। इसलिए जब अरुणिमा ने लगभग गिटार बजाना सीख लिया था तब आरुषि ने उसे ट्री हाउस की छत से धक्का दे दिया, जिससे उसके सिर पर गहरा जख्म आया। अरुणिमा अपने स्कूल में भी बहुत अच्छी थी। वो इंटरनेट देखकर बहुत सारी चीज़ें जल्दी सीख जाती थी, जबकि आरुषि पढ़ाई में और बाकी चीज़ों में अच्छी नहीं थी। उसमें कोई कौशलता नहीं थी और यही बात उसे अरुणिमा से जलन और नफरत करने पर मजबूर करती थी। चूंकि बृजेश जी और आशा जी के जीवन में ये दोनों बच्चियाँ थीं, इसलिए उन्होंने जल्दी ही दोनों का व्यवहार समझ लिया था, और आरुषि का जो व्यवहार था वो आशा जी से छुपा नहीं था। आशा जी ने बताया कि किस तरह से एक बार अरुणिमा के पूरे शरीर पर लाल लाल चकत्ते दाने पड़ गए थे, जिससे वो कई हफ्तों तक बिस्तर पर रही। कारण ये था कि आरुषि ने जानबूझकर केमिस्ट्री लैब से कोई केमिकल चुराकर अरुणिमा को दे दिया था। शुक्र है कि वो केमिकल बहुत जहरीला नहीं था और अरुणिमा की जान को खतरा नहीं हुआ, पर उसके शरीर पर अजीब दाने वायरल की तरह फैल गए थे। जब बृजेश जी और आशा जी को ये पता चला तो उन्होंने आरुषि को बहुत डांटा, और आशा जी ने पहली बार आरुषि पर हाथ भी उठाया, क्योंकि आरुषि ने लगभग अरुणिमा की जान लेने की कोशिश की थी। पर जब उन्होंने आरुषि के हाव भाव देखे तो पाया कि आरुषि असामान्य प्रतिक्रिया देती थी। वो किसी बात पर पछतावा नहीं दिखाती, बल्कि और भी ज्यादा नफरत और गुस्से से उस ओर देखती। इससे उन्हें एहसास हुआ कि शायद आरुषि मानसिक रूप से ठीक नहीं है। जब तक अरुणिमा वायरस के असर से बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी रही, बृजेश जी और आशा जी आरुषि को थेरेपिस्ट के पास ले गए और उसका इलाज करवाने की कोशिश की। थेरेपी से उन्हें पता चला कि आरुषि की मानसिक स्थिति असामान्य है।
वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लक्षण दिखाती है। ये सुनकर वो दोनों बहुत घबरा गए। इसका मतलब ये नहीं था कि वो आरुषि से कम प्यार करते थे, वो उससे भी उतना ही प्यार करते थे और उसकी भी फिक्र करते थे। इसलिए उन्होंने उसका इलाज करवाना शुरू किया, जो कई हफ्तों तक चलता रहा। अंततः अरुणिमा भी ठीक हो गई। ब्रिजेश जी और आशा जी दोनों बच्चों को अलग माहौल देने के लिए उन्हें अपने फार्म हाउस ले गए, जहां उनका ट्री हाउस था। वहां अरुणिमा को गिफ्ट में एक गिटार मिला, जबकि आरुषि को एक बार्बी डॉल दी गई। पर आरुषि ने बार्बी डॉल का सत्यानाश कर दिया। उसने उसके मुंह पर काली पोटी लगाई, उसके हाथ पैर टेढ़े कर दिए और उसके गले में रस्सी बांधकर उसे ट्री हाउस पर लटका दिया, जैसे कि वो बार्बी डॉल कोई असली व्यक्ति हो। और फिर जब उसने देखा कि अरुणिमा ट्री हाउस के कोने पर गिटार बजा रही थी, तो उसका साइको रिएक्शन बहुत खतरनाक रूप से सामने आया। वो आराम से अरुणिमा के पास गई। अरुणिमा ने मुस्कुराकर अपनी बहन को अपने पास बुलाया, लेकिन जैसे ही आरुषि उसके पास पहुंची, उसने अरुणिमा को ट्री हाउस से धक्का दे दिया। अरुणिमा नीचे टाइल्स के फर्श पर गिर पड़ी, उसका सिर फट गया, खून बहने लगा। पर हैरानी की बात यह थी कि आरुषि पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो ट्री हाउस के किनारे पर बैठी शैतानी मुस्कान लिए अरुणिमा को देखती रही, जैसे कि वो उसके मरने का इंतजार कर रही हो।